डॉक्टर साहब, आज हम डिमेंशिया पे बात करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है ये बीमारी?
जी बिल्कुल, डिमेंशिया इसमें एक जहन जहन की जो सोच होती है, जो एक कुव्वत सोच होती है एक इंसान की, उसको बरकरार न रहना उसको डिमेंशिया कहते हैं। इसकी कुछ आगे आगे फिर उसमें हम बात करेंगे इसके अलामत पे, वजूहात पे, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी जो इसमें मतलब जो असरअंदाज जो चीज़ होती है वो क्या कहते हैं इसको, मेमोरी लॉस होती है। अच्छा। याददाश्त, एक इंसान अपनी याददाश्त बिल्कुल खो बैठता है इस डिमेंशिया में, तो उसकी एक अलामत है जो इसकी मेजर अलामत है। वो इंसान की वो अपनी याददाश्त बरकरार नहीं रख पाता है, तो उसकी सबसे बड़ी अलामत डिमेंशिया की यही है, इसी को हम डिमेंशिया का नाम देते हैं
क्योंकि वो याददाश्त खो रहता है।
जी बिल्कुल।
तो इसकी वजह क्या है कि किस वजह से ये बीमारी होती है?
जी बिल्कुल, सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी वजूहात में से एक बीमारी है जिसको अल्जाइमर कहा जाता है। तो अल्जाइमर की जो बीमारी है, और जो अशख़ाश अल्जाइमर में शामिल हुए हो या जो शख्स इस अल्जाइमर की बीमारी का शिकार हो गया हो, उसमें ज़्यादातर रिस्क पाई जाती है कि वो इस डिमेंशिया का शिकार हो जाए।
अच्छा।
इसके साथ साथ फिर क्योंकि अल्जाइमर्स में भी हमारे ब्रेन जो है, हमारा जहन जो है मुब्तला हो जाता है, और ब्रेन के कुछ हमारी, जैसे मैं आपको एक बात कहूंगा कि आगे आगे जाके जब इंसान मतलब उम्र रसीदा होता जाता है, तो उसकी एक याददाश्त अपनी वो थोड़ी बहुत खुद मतलब आहिस्ता आहिस्ता से कम हो जाती है, वो चीज़ों को याद नहीं रख पाता है। लेकिन डिमेंशिया में क्या हो जाता है, वो बिल्कुल ही मतलब वो दूसरे वो शिद्दत इख्तियार कर लेता है याददाश्त खो जाना। अभी वो एक चीज़ देखेगा, एक मिनट पहले एक मिनट के बाद उसको याद नहीं रह पाएगा।
अच्छा।
मैंने क्या चीज़ करना है या मैंने कौन सा काम अंजाम दे दिया और इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, तो इसकी वो शिद्दत इख्तियार कर लेता है डिमेंशिया में। इसी से हम एक नॉर्मल जो एजिंग का इफेक्ट हम उसको कहते हैं, जिसमें मतलब उम्र रसीदा और सन रसीदा जो अफराद हैं मुब्तला हो जाते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उस एक नॉर्मल मतलब एजिंग इफेक्ट से और इसको डिमेंशिया से। एक अल्जाइमर्स की वजूहात मैंने बताया, और इसके बाद स्ट्रोक्स जो हो जाते हैं, हमारे कई मतलब शख्स जो होते हैं या मरीज जो होते हैं वो स्ट्रोक का शिकार हुए होते हैं, तो उनके जहन पे भी असर हो जाता है, या किसी, क्योंकि हमारा जहन जो है उसको एक कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया है जिनको हम लोब्स कहते हैं। तो हमारे जहन में फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, और इसी तरीके से पैरेटल और ऑक्सीपिटल लोब है। तो इस डिमेंशिया में ज़्यादातर फ्रंटल और जो ये टेम्पोरल लोब है वो इन्वॉल्व हो जाता है, जिसको हम फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे जहन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस डिमेंशिया में ये चीज़ें मतलब मुब्तला हो जाती है। ब्रेन सेल्स चूंकि डैमेज हुई होती हैं, उनको रिप्लेस नहीं कर पाते हैं दूसरे चीज़ों के साथ। अगर दूसरे हमारे जिस्म की ब्रेन सेल्स हो गई तो वो रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रेन सेल्स होती है अगर वो काम करना छोड़ देंगे, उनको किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, वो वहीं की वजह से ये रहेगी, क्योंकि ब्रेन की सर्जरी नहीं कर सकते, उसके बदले कोई और चीज़ नहीं डाल सकते हैं। ये कुछ इनकी वजूहात है। इसके साथ साथ कोई किसी मतलब इंजरी का शिकार हुआ हो।
अच्छा।
कोई किसी का
एक्सीडेंट हो गया।
जी बिल्कुल, जिसका जिसके साथ उसका सर मतलब जिसमें उसका मतलब शिकार हो गया हो, या किसी चीज़ उसका सर किसी चीज़ के साथ टकरा गया हो, तो वो उसकी ब्रेन पे इंजरी भी डाल सकता है, तो उसकी वजह से भी डिमेंशिया का शिकार हो सकता है। इसकी दूसरी कुछ वजूहात भी है, छोटी छोटी वजूहात भी है, डिप्रेशन, वाइटामिन B12 की डिफिशेंसी, और ऐसे ही कुछ जैसे अलामत स्मोकिंग, अल्कोहल, जो छोटी छोटी चीज़ें जो इनकी मतलब वजूहात बन सकती है, लेकिन इन वजूहात को हम ट्रीट कर सकते हैं। जो मैंने अल्जाइमर का बोल दिया और दूसरी जो ट्रॉमेटिक इंजरीज होती है ब्रेन पे, उनको हम मतलब इलाज नहीं कर सकते हैं वो वैसे कि, लेकिन दूसरी जो छोटी छोटी अलामतें मैंने बताई विटामिन B12 की, वो हम विटामिन B12 एक बंदे को दे सकते हैं, वो उसका मतलब उसके वो डोजेस ले सकता है, जिसकी वजह से वो मतलब एक इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से दिन ब दिन एक मतलब एक नॉर्मल तरीके से गुजार सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं डिमेंशिया की, और डिमेंशिया में डॉक्टर साहब आपने बताया कि जहन पर हमारे असर पड़ता है, और हम वजूहात की बात कर रहे थे, याददाश्त चली जाती है इसमें। आपने बताया कि हम सिगरेट नोशी और शराब नोशी और इस टाइप की वजूहात से भी हो सकता है, और क्या वजूहात हो सकती हैं?
जी बिल्कुल, इसमें एक दो वजूहात और भी रह जाती हैं। कभी कभार हमारी ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से। कभी कभार अगर इंसान किसी मतलब अगर हम देखते हैं कि अभी पहाड़ पे चढ़ा है या दूसरी किसी ऊंची जगह पे चढ़ा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई क्योंकि कम हो जाती है, वैसे ही अगर हम नीचे जाके किसी एक शख्स को लेंगे या ऐसे मरीज को लेते हैं जिसको ऑक्सीजन की सप्लाई कमी, ऑक्सीजन की कमी वास और उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसके जहन में जो है ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से भी डिमेंशिया का शिकार हो सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी भी कहा कि ब्रेन सेल्स होती हैं जो रिप्लेस नहीं होती है, ब्रेन सेल्स के अंदर پروٹینز کی مطلب جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں پروٹینز برین سیلز کے اندر, تو وہ جم جانا پروٹینز کا وہ بھی شکار انسان جو ہے وہ ڈیمنشیا کا شکار ہو سکتا ہے.
اچھا, تو ڈیمنشیا میں آپ نے کہا یاداشت, تو الزائمر میں بھی یاداشت جاتی ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟
جی بالکل, جیسے میں نے کہا کہ الزہمرس ہی ایک وجہ بن جاتی ہے ڈیمنشیا کی. الزہمرس کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں وہی زیادہ تر 60% کیسز ایسے ہیں جو جن کو پہلے الزہمرس کی ڈیزیز کا شکار ہو گئے ہیں, اس کے بعد وہ آگے جا کے لیٹ سٹیجز میں ڈیمنشیا کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ الزہمرس میں یاداشت کی اتنی کمی نہیں, الزہمرس میں بھی برین ڈیمیج ہوتا ہے. جی بالکل, الزہمرس میں بھی برین ڈیمیج ہوتا ہے, لیکن اتنی برین ڈیمیج مطلب آگے جا کے اس کی کانشیسنیس برقرار رہتی ہے اور اس کی یاداشت برقرار رہتی ہے, لیکن جو آگے جا کے پھر ڈیمنشیا میں اس کی بالکل یاداشت بھول جاتا ہے, اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے, اس کی اورینٹیشن چینج ہو جاتی ہے ڈیمنشیا میں, مطلب کہاں پہ اس کو کون سی چیز رکھنی ہے, کن چیزوں کو تمیز سے رکھنا ہے, کن چیزوں کو کہاں پہ رکھنا ہے. ڈیمنشیا والے جو افراد ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا خیال نہیں رہتا ہے, بالکل وہ ان چیزوں سے برطرف ہو جاتے ہیں, تو ان کو خیال نہیں رہتا ہے ان کو ٹائم کا, مطلب وہ ان کا خیال نہیں, اس چیز کا خیال نہیں رہتا ہے. ابھی آپ کو وہ ایک ٹائم کا بتائیں گے, ایک منٹ کے بعد وہ دوسرا ٹائم آپ کو بتائیں گے, کیونکہ وہ ان کی یاداشت جو ہے برقرار نہیں رہ پاتی ہیں. جی بالکل,
وہ کسی چیز کو یاد نہیں رکھ پاتے ہیں. اور علامات کیا ہیں اس کی کہ ہم بتائیں کہ ہاں اس شخص کو ڈیمنشیا ہے؟
تین سٹیجز ہے ڈیمنشیا کے, جن کی وجہ سے ہم علامات کو ظاہر کر سکتے ہیں, علامات کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ ڈیمنشیا کا شکار ہو گیا ہے. پہلے اس کو ایک ارلی سٹیج, پھر مڈل سٹیج, پھر لیٹ سٹیج. ارلی سٹیج میں سب سے بڑی علامات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو یہ بھول جانا, چیزیں بھول جانا, ایک چیز اس نے اٹھائی یہاں پہ رکھ دی, کچھ دن کے بعد اس نے بھول دیا میں نے کہاں رکھنی ہے, میں نے کہاں رکھی ہے چیزیں. سب سے بڑی ارلی سٹیج میں یاداشت, مطلب یاداشت نے چیزیں بھول جانا. اس کے ساتھ ساتھ پھر مڈل سٹیج میں چلتے ہیں, مڈل سٹیج میں سب سے بڑی علامات جو ہے ابھی جو اپنی جو فیملیئر پلیسز ہوتی ہیں اس کے ساتھ, جہاں وہ جا رہا ہے روٹینلی, وہ نارملی وہاں وہ گیا ہوتا ہے, بہت ہر روز وہاں پہ جاتا ہے, لیکن مڈل سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی یاداشت خود کیونکہ وہ افیکٹ ہوئی ہوتی ہے, متاثر ہوئی ہوتی ہے, تو وہ حالانکہ گھر میں بھی, گھر کے اندر بھی ہو, اس کو گھر کے راستے بھول جاتے ہیں, وہ گھر کے اندر ہی کھو جاتا ہے, اور اس کو آہستہ آہستہ سے پھر اپنی وہ دوسرے ٹائم نہیں وہ یاد رکھ پاتا ہے, اور اپنی وہ چیزیں جیسے میں نے کہا کہ اس مڈل سٹیج میں بھی وہ بھول جاتے ہیں کون سی چیز میں نے کہاں پہ رکھی. تو پھر لیٹ سٹیج میں بیہیویئرل چینجز آ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ. آگے پھر یاداشت لیٹ سٹیج میں بیہیویئرل چینج کے ساتھ ساتھ کیا آتی ہے, اس کا جو بیہیویئر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. بیہیویئر چینج ہونے کی وجہ سے وہ کبھی شدت اختیار کر سکتا ہے, اگر آپ ان سے بات کرو گے تو وہ شدت اختیار کر کے آپ سے لڑنا جھگڑنا چاہیں گے. جی بالکل, بلا وجہ آپ سے لڑنا جھگڑنا چاہیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے ہی راستے اور اپنے جو دوست ہیں, احباب ہیں, اور اپنے گھر کے مطلب خاندان کے جو افراد ہیں ان کے چہرے یاد نہیں رہ پاتے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں, یہ ان کی علامات ہے ڈیمنشیا کی.
ڈاکٹر صاحب ایک بہت عجیب سی بات آپ نے کہی, ارلی سٹیج میں آپ نے کہا کہ جیسے سامان رکھ کے لوگ بھول جاتے ہیں.
جی بالکل,
تو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, شاید ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز رکھی, اب وہ پورا ایک ہفتے تک ڈھونڈ رہے ہیں اسے اور وہ چیز نہیں ملی, اور شاید کبھی نہ ڈھونڈ رہے مل جائے, تو کیا یہ بھی اس کی کچھ علامت ہے, ہم اسی طرف جا رہے ہیں یا نہیں, ایسا کس لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟
جی بالکل, یہ آپ نے اچھی بات کہی اور اچھا سوال تھا آپ کا. ایسے بھی مطلب ایک معمولاً ایک بندہ ایسے بھی بھول جاتا ہے کبھی کبھی, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس, اگر آپ کو لگے کہ آپ کے خاندان میں یا آپ کے دوستوں میں کوئی ڈیمنشیا کا شکار ہو رہا ہے, تو اس کو آپ بہت طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کو کوشچنز پوچھ سکتے ہیں, آپ اس کو دوسرے طریقے سے آزما سکتے ہیں. تو جب وہ ان چیزوں کا مطلب آپ اس کو ابھی پوچھو گے آپ کا نام کیا ہے, آپ نے ٹائم کیا ہے ابھی, کیونکہ ٹائم کا بہت زیادہ ان چیزوں, ان ڈیمنشیا کے جو یہ مریض ہوتے ہیں, جو یہ افراد ہوتے ہیں, وہ اپنے ٹائم کا خیال نہیں رکھتے ہیں, مطلب وہ ٹائم بھول جاتے ہیں بار بار, تو ان کو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹائم کا پوچھ سکتے ہیں, یا ان چیزوں کا دوسری چیزوں کا بھی پوچھ سکتے ہیں جو مطلب انسان کی سوچ کے مطابق, جو انسان کی سوچ کو برقرار رکھتے ہیں, جو انسان کی سوچ سے آگے جا کے وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں, وہ ان چیزوں کا خیال رکھ کے آپ اپنے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں. جب ان چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ پھر اپنی وہ جو یہ بھولا پن جو آتا ہے ان میں, یا جو یہ چیزیں یاداشت, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جانا, وہ جلد جلد بھول جاتے ہیں. ابھی میں آپ سے کہوں گا ایک چیز, ایک منٹ پہلے میں نے کہا آپ سے ٹائم ابھی یہ ہوا ہے, لیکن ابھی کچھ سیکنڈ کے بعد میں آپ سے وہی کہوں گا کہ ٹائم کیا ہے, لیکن اگر آپ ڈیمنشیا کے افراد سے پوچھو گے وہ بالکل بھول جاتے ہیں ایک سیکنڈ یا 30 سیکنڈ سے پہلے ٹائم, اس نے کیا بتایا تھا اور مجھے کیا بولنا ہے, ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एक नॉर्मल पर्सन में और डिमेंशिया के
लिए। ये चीज़ अच्छी है कि अगर कोई शख्स जो ऐसे भूल जाता है तो उसके काफ़ी टेस्ट हैं जो हम अंजाम दे सकते हैं और बता सकते हैं कि ऐसी बीमारी होने वाली है। वापस मैं जा रही हूँ आखिरी मरहले पर। आपने कहा कि वो जो लोगों को भूल जाते हैं, तशद्दुद अख्तियार कर लेते हैं, क्या ऐसा भी होता है कि वो खुद को भी भूल जाएं कि वो कौन है?
जी बिल्कुल, ये भी अच्छा एक सवाल किया आपने। डिमेंशिया में जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो बरकरार रहती है और बाकी चीज़ों का असर, बाकी चीज़ें असरअंदाज होती हैं क्योंकि हमारे जहन के अंदर बहुत सारे एरियाज है जो बहुत सारी दूसरे डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए मतलब यूज़ होते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे जहन के अंदर है। ऐसे ही मतलब मेमोरी के लिए और फेस रिकॉग्निशन के लिए हमारी ब्रेन के अंदर अंदर बहुत सारी एरियाज है। लेकिन जो डिमेंशिया के अफराद होते हैं, डिमेंशिया के जो ये मरीज़ होते हैं जो इस बीमारी का शिकार हो गए हों, तो वो सेल्फ कॉन्शियसनेस उनमें रह जाती है। अच्छा। लेकिन जो बाकी चीज़ें हो जाती है, दूसरे अफराद को पहचानना या दूसरी ऐसी वैसी चीज़ों का ख्याल रखना जो हमने बयान किए हैं अभी, वो चीज़ें उनमें बिगाड़ पैदा आ जाता है ऐसे अफराद में।
यानी वो खुद को पहचानते हैं और पहचानते रहते हैं।
जी बिल्कुल।
अच्छा, क्योंकि आपने कहा खुद को पहचानते हैं, क्या उनके साथ ऐसा हो सकता है जैसे वो कुछ काम करना भूल जाएं या कुछ लव्स भूल जाएं या उनकी गुफ्तगू में कुछ प्रॉब्लम आने लगे क्योंकि उनके पास वो जो अल्फाज हैं वो उनके जहन में नहीं आते हैं, क्या ऐसा भी होता है?
जी बिल्कुल, ये भी सही है जैसे हमने कहा, क्योंकि हमारी एक जो ये जहन है अल्लाह ताला ने ये एक मतलब छोटी सी जगह पे है रखा है ऊपर सर में, तो सारी चीज़ें एक साथ है। जो जैसे ही हमारा कॉन्शियसनेस का एरिया है या लोगों को पहचानने का एरिया है दिमाग में या जबान से बात निकालने का एरिया है और वो लफ्ज़ों को जोड़ने में जो मदद करती है वो जहन का एरिया वो भी है, तो इन लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके शिद्दत अगर इख्तियार कर लें तो वो फिर अपने लफ्ज मतलब अच्छे तरीके से या आसान तरीके से बोल नहीं पाते, उनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, तो वो दूसरे लोगों को समझाने में या जो वो बात करना चाहते हैं उसमें टाइम लग रहे उनको, क्योंकि वो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ नहीं सकेंगे। ये सारी जहन वाली जो ये बीमारियाँ है, जो ये ब्रेन के साथ डिसऑर्डर्स है, डिमेंशिया चूँकि एक ही बीमारी नहीं है, डिमेंशिया में बहुत सारी बीमारियाँ जहन की जो है एक साथ आ जाती हैं, जिसमें पार्किंसंस डिजीज भी है जो भी जहन पर असर करता है, हंटिंगटनस डिजीज का मैं बोल रहा हूँ, और ऐसा ऐसा जब ये सारी बीमारियां एक साथ इन दोनों चीज़ों का एक साथ मतलब बराबिता हो जाता है तो जाहिर बात है कि आगे जाके उसकी स्पीच पे भी असर पड़ जाता है,
बहुत सी चीज़ों पे असर पड़ता है। आपने कहा कि जैसे जैसे सन बढ़ती जाती है, जैसे अल्जाइमर के लोग हैं उनके अंदर डिमेंशिया की प्रॉब्लम पाई जा सकती है, क्या ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल अफराद में भी वो नॉर्मल, यानी आपने एक वजूहात में से एक बताया था, एक वजह यह है कि एक्सीडेंट की वजह से, तो यानी आम अफराद जो अभी उस एज तक नहीं है जैसे 20 साल के 30 साल के, क्या उनमें भी ये प्रॉब्लम पाई जा सकती है?
जी बिल्कुल, ज़्यादातर 60% केसेस जो है वो मतलब उम्र रसीदा अफराद में पाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे बंदों में भी नहीं पाया जाएगा। इसमें कुछ है जिसको हम बोलते हैं एडल्ट जो डिमेंशिया होता है, तो उसको हम एडल्ट डिमेंशिया वो दूसरी किस्म दूसरी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, तो उनके जहन पर भी डिमेंशिया का असर हो सकता है, और दूसरे अफराद भी जो मतलब इसको हम एज फैक्टर पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर 60% जो मैंने कहा कि सिन रसीदा अफराद पे ज़्यादातर असर करता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर मतलब उसमें दूसरे लोग भी शिकार हो सकते हैं।
एक और सवाल जो मेरे पास ये है वो ये है कि इसे डायग्नोज कैसे करते हैं? जैसे घर में आपने बताया कि हम उससे बार बार सवाल पूछेंगे, तो और भी कुछ तरीके हैं इसको, यानी घर में डायग्नोज करने के और फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं?
जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले ही कुछ थोड़ी बहुत उसकी तरफ इशारा दे दिया, हाँ, तो वैसे ही आप उसके साथ सवालात का सिलसिला जारी रखें। कॉग्निटिव स्किल्स उसके मतलब उसको जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव स्किल्स, तो कॉग्निटिव स्किल्स जो है मतलब सोचने की जो तदाबीर होती है जहन से आ जाती हैं, तो उनके ऊपर उसके साथ सवालात करें। अगर वो उन चीज़ों का सवाल जैसे मैंने कहा टाइम के बारे में पूछे, मतलब डेट के बारे में पूछे, आज कौन सा साल चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा दिन चल रहा है, ऐसे ऐसे सवालात पूछे, और एक चीज़ रखे उसके पास, फिर कुछ देर के बाद उसको पूछे ये चीज़ कहाँ पर है, ये चीज़ कहाँ रखी आपने, तो अगर इन सारी चीज़ों को मिला के आपको लगता है कि वो मतलब दे नहीं रहा है वो बिल्कुल मतलब, तो वो डिमेंशिया आप डायग्नोज कर सकते हैं कि वो डिमेंशिया का शिकार हो गया हो, फिर आप डॉक्टर के साथ रुजू कर सकते हैं, वो आपको वो अपनी तरीके से दूसरी चीज़ें उनको बता सकते हैं, तो ऐसे आपको मतलब इसकी मेडिकेशंस भी नहीं है ज़्यादातर, तो ज़्यादातर जो फैमिली केयर सिस्टम जो है जैसे मैंने बताया उसका ख्याल रखें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा से थोड़ी बहुत वो उन उलझनों से अच्छी तरह से गुजार सकें।